हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद तृतीय अध्याय श्लोक संख्या 30 और 31। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को ग्रहण करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण कीजिए, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्बरधारो बिम्बफलधरोष्ठा पुणेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्व अहं न जानि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति स्तवे, वेदे साङ्गपत् क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थित तत् कतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्दा श्री अद्वैतगदाधार श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक नंबर 30। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। आसुत गोस्वामी भगवान के एक अति विलक्षण स्वरूप के विषय में बता रहे हैं। वे कहते हैं एतद्रूपं भगवतो यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनः एतद्रूपं भगवतो यरूपस्य चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनः एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य 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 चिदात्मनः मायागुणैर्विरचितं महदादिभिरात्मनः। शब्दोकात् एतत् रूपं भगवत, एतत् मन ये सब, रूपम अर्थात रूप, भगवत यानी भगवान के, ह्यरूपस्य चिदात्मना, ह्यरूप अर्थात निश्चय ही अरूपस्य यानी निराकार के, चित आत्मा यानी ब्रह्म के माया गुणे विरचितम, माया अर्थात भौतिक शक्ति या माया, गुणे अर्थात गुणों से विरचितम यानी निर्मित, महदादि भिरात्मना, महद आदि का मतलब होता है पदार्थ के अवयवों से, यानी भौतिक पदार्थ है ना, उनसे मिलकर आत्मनि अर्थात आत्मा ने, आत्मा में। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। अनुवाद भगवान के विराट रूप की धारणा जिसमें वे इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं काल्पनिक है, यह तो अल्पज्ञों तथा नवदीक्षित को भगवान के रूप की कल्पना में समंजन कराने के लिए है, लेकिन वस्तुतः भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि भगवान के नाना अवतारों के साथ साथ उनके विश्व रूप या विराट रूप की धारणा का उल्लेख नहीं हुआ, क्योंकि ऊपर बताए गए भगवान के सारे अवतार दिव्य हैं और उनके शरीरों में भौतिकता छू तक नहीं सकती। उनके शरीर तथा आत्मा में वैसा कोई अंतर नहीं है कि बद्ध जीव में जिस तरह होता है। विराट रूप की कल्पना तो केवल नव दीक्षित पूजकों के लिए है, उन्हीं के लिए भौतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी व्याख्या द्वितीय सिकंद में की जाएगी। विराट रूप में विभिन्न लोकों के भौतिक रूप को उनके पांच हाथ आदि के रूप में कल्पित किया गया है। वस्तुतः ऐसे वर्णन नव दीक्षितों के लिए होते हैं, वे पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते। भगवान के भौतिक बोध की गणना उनके वास्तविक रूपों की सूची में नहीं की जाती। परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के भीतर रहते हैं, यहाँ तक कि परमाणु के भी भीतर रहते हैं, लेकिन बाह्य भौतिक रूप तो कल्पना मात्र ही है, चाहे वह भगवान का हो या जीव का। बद्ध जीव के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है। निष्कर्ष तो यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। भगवान तथा जीव दोनों ही जीव आत्माएं हैं और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक यानी चिन्मय होता है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणम्। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। आज इस श्लोक में भगवान के विराट रूप के विषय में बताया जा रहा है और भगवान के विराट रूप के विषय में, देखो अभी भगवान के सारे अवतारों के विषय में हम पढ़ रहे थे। इस चैप्टर का नाम क्या है? समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण। तो जितने भी भगवान के अवतार, जैसे अब तक हमने 22 अवतार पढ़े, जिसमें कुछ पुरुष अवतार, कुछ गुण अवतार, कुछ शक्ति आवेश अवतार, कुछ अंश अवतार, उनके विषय में पढ़ा, लेकिन उनमें कहीं भी भगवान के विराट रूप के विषय में नहीं कहा गया, क्योंकि ये विराट जो स्वरूप है वो भौतिक जगत में प्रकट होता है खाली, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत का एक हिस्सा नहीं है। इसलिए इस रूप के विषय में क्या कहा गया? एतद् रूपम भगवतो यरूपस्य चिदात्मना, कि ये जो भगवान का अरूप, अरूप माने निराकार, जो जिस तरह से हम सोचते हैं कि कण कण में भगवान समाये हुए हैं, तो वो एक जैसे भौतिक चीजों में देखते हैं ना हम के भौतिक, ये इसलिए है भगवान। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अच्छा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यह तो अल्पज्ञों तथा नव दीक्षितों को भगवान के रूप की कल्पना में समंजन कराने के लिए, यानी कि अभी देखो कोई कोई नए नए भक्त आते ना, वो भगवान को इस तरह से स्वीकार नहीं करते कि भाई इतना छोटा सा है कृष्ण, छोटा सा बच्चा है, 5 साल का है, उसकी वो दौड़ रहा है, उसकी माँ उसको पकड़ के बांध रही है, तो ये धारणा उनकी मन एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये भगवान कैसे हो सकता है, क्योंकि कैसे लगता है कि भगवान एक भव्य विभूति होनी चाहिए, उसके अंदर बहुत बहुत चमत्कार करना चाहिए उसको। साधारण सा एक बच्चा भगवान, मतलब उनकी बुद्धि इस बात को स्वीकार नहीं करती। वास्तव में जीव का मेन मकसद क्या है? वास्तविकता ये है कि हम भगवान को भगवान के उसी स्वरूप में स्वीकार करें जिसमें वो है, यानी कि जिसमें वो चाहते हैं। भगवान के तो सारे स्वरूप हैं, ये सारे अवतार भी भगवान के हैं और विराट स्वरूप भी भगवान का ही है, लेकिन भगवान चाहते हैं कि कोई ना कोई रस का आस्वादन करे, जी मेरे साथ, जैसे पांच रसों के विषय में हम जानते हैं, शांत रस, सख्य रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, तो भगवान चाहते हैं कि सब जीव मेरे साथ किसी रस का आस्वादन करें। इसलिए भगवान कभी, कृष्ण कभी भगवान बनकर आपके सामने आना पसंद नहीं करते। कृष्ण सोचते हैं कि या तो मैं आपका दोस्त बनकर आपके साथ आऊं, या तो फिर आपका स्वामी बनकर, आपका पुत्र बनकर, आपका प्रेमी बनकर। तो कृष्ण की इच्छा है कि वो सदैव आपका कुछ संबंधी बनकर आपके साथ है। लेकिन कुछ लोग इस तरह से भगवान की धारणा को स्वीकार नहीं कर सकते। उनके मन में ऐसा होता है कि भगवान बहुत विशाल होना चाहिए, और इतना विशाल, फिर भगवान क्योंकि इतनी करुणामयी है, भगवान के अंदर इतनी करुणा है कि वो अपने भक्त की, अपने इस जीव की हर इच्छा को पूरा करता है। भगवान कहते हैं 4.9 में, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तथैव वचामि हम। जो कोई भगवान को जिस भावना से प्रेम करता है, और संसार में कुछ लोग इतने अल्पज्ञ होते हैं जो केवल उसी पर विश्वास करते हैं जो वो अपनी आंखों से देखते हैं। वो सोचते हैं कि हम देखें कोई इतना विशाल स्वरूप भगवान का, तो हम भगवान को स्वीकार करते हैं। वास्तव में भगवान को इन भौतिक नेत्रों से देखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजना चरिता भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो भगवान सिर्फ अपने भक्तों को ही नजर आते हैं, और वो भक्त जो अपने हृदय के नेत्रों पर प्रेम का अंजन लगाते हैं, यानी कि जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान केवल उन्हीं के सामने प्रकट होते हैं। तो ये भगवान को देखने का एक प्रोसेस है, कि यदि आपको भगवान को देखना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, हृदय के अंदर प्रेम, जो नेत्र हैं हृदय के, उस पर प्रेम का अंजन अर्थात श्रद्धा होनी चाहिए कि भगवान है, और उसी भगवान के फिर हम प्रेम से दर्शन कर सकते हैं। भगवान कहते हैं 6.30 में, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्रम वही पश्यति, जो मुझे हर जगह और हर समय देखता है, तस्या हम न प्रणश्यामी सच में न प्रणश्यति, जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और ना ही वह कभी मेरे लिए अदृश्य होता है। इसलिए भगवान क्योंकि ये न केना प्रकारे जीव के साथ अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए क्योंकि जीव जो है वो भगवान को उसके वास्तविक स्वरूप में स्वीकार नहीं करते हैं। जो जीव जो अल्पज्ञ होते हैं, भगवान उनके लिए भौतिक रूप, भौतिक विश्व रूप जिसको कहा जाता है, विराट स्वरूप, वह स्वीकार करते हैं। वो इस तरह से बताया जाता है शास्त्रों में कि वह इतना विशाल है कि संसार की समस्त वस्तुएं उसके अंदर आ जाती हैं। जैसे बताया जाता है, संसार में जितने भी पहाड़ हैं वो उस विराट स्वरूप की हड्डियां हैं, और जितने भी संसार में नदियां हैं और समुद्र हैं वो सब उस विराट पुरुष की ये नसें हैं, और उसके अतिरिक्त सूर्य और चंद्रमा उस विराट पुरुष के नेत्र हैं, और इस तरह से इतना विशाल बताया जाता है उस विराट स्वरूप को। लेकिन क्योंकि वो भौतिक चीजों से निर्माण बताया जाता है, माया गुणा विरचितम, क्योंकि वो भौतिक, और महदादि भिरात्मना, क्योंकि भौतिक वस्तुओं से भगवान को है ना बताया जाता है, इसे क्योंकि भौतिक वस्तुएं तो समाप्त हो जाने वाली हैं, चाहे वो कितनी ही भौतिक वस्तु कितनी ही पावरफुल हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि वह समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ कृष्ण प्रभुपाल जी बता रहे हैं कि वो जो भगवान का जो स्वरूप है, जिसको विराट स्वरूप कहा जाता है, वो भगवान का काल्पनिक स्वरूप है, उस वो तथ्य नहीं है। और इससे पहले जितने भी अवतार अभी तक बताए गए, जैसे मत्स्य, कच्छप, वामन, विराह, नरसिंह, कपिल, ऋषभ, जितने भी भगवान के अवतार बताए गए वो सब दिव्य हैं। उनका शरीर और उनका मतलब वो शरीर और आत्मा इस तरह नहीं है, वो पूरा का पूरा भगवान दिव्यता है, वो पूरा का पूरा भगवान। जिस तरह कृष्ण और कृष्ण के शरीर में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार भगवान के सारे अवतार भी ऐसे ही हैं कि वो भौतिक नहीं हो सकते। अब भगवान के समस्त अवतारों की कोई ना कोई हर टाइम पर होते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इस टाइम पर है, अभी द्वापर में भगवान आए। तो उन अल्पज्ञ लोगों के लिए जो भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकते, उनको भगवान के विषय में केवल एक ऐसा तरीका बताया जा रहा है उसमें कि वो हर, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हर समय जो मेरा ध्यान करे। अब जो प्रेम करेंगे वो तो कृष्ण का ध्यान करते हैं, परंतु जो भगवान से प्रेम नहीं करते हैं, केवल ज्ञान ही जिनका एकमात्र लक्ष्य होता है, तो भगवान उनके लिए खुद को स्वयं को विराट स्वरूप में बताते हैं। क्योंकि विराट स्वरूप में क्या होता है, संसार का एक एक कण आ जाता है। और इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने जैसे 10वें अध्याय में बताया अर्जुन को, भगवान श्री कृष्ण यानी कि भगवान एक जीव आत्मा को यह अवसर प्रदान करते हैं कि वो हर क्षण किस प्रकार से मुझे स्मरण कर सके, है ना। भगवान कहते हैं कि आपको हर समय मुझे स्मरण करना है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्, कंटिन्यूअस आपको मुझे भजन करना है, मुझे स्मरण रखना, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्ण। क्यों भगवान इसलिए कहते हैं, सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, कि आपको हर क्षण मेरा स्मरण करना है। क्यों, इसलिए कि यदि एक क्षण के लिए भी हम भगवान को भूल जाएंगे तो माया उस समय हमारी ओर देख रही होती है। जो संसार की भगवान की जो माया है ना, वो सदैव ये देख रही होती है कि कौन भगवान को स्मरण नहीं कर रहा है, तो उस समय वो उसको दबोच लेती है, फिर वो और भी उसको माया में गिरा देती है। इसलिए भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त जीव को हर समय मुझे स्मरण करने का अवसर प्रदान हो। तो इसे भगवान कहते हैं, आई एम द टेस्ट ऑफ वॉटर। भगवान कहते हैं 7.8 में भगवान बताते हैं, रसो हम अप्सु कौन्तेया प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शक्तः कि पौरुषं नृषु। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ। अब जल का स्वाद, हर व्यक्ति हर रोज जल का सेवन करता है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो कभी पानी ना पिए, है ना। निर्जला के दिन नहीं पीते, लेकिन है ना, हर वक्त जब हर रोज उसको पानी पीना होता है। तो भगवान कहते हैं कि रसो हम अब सुकौनते, मैं जल का स्वाद हूँ। यानी कि जिस समय भी तुम्हें प्यास लगे और तुम जल का सेवन करो, तो तुम्हें यह याद आना चाहिए कि इससे जो मुझे तृप्ति मिल रही है वो इसलिए मिल रही है क्योंकि इसमें भगवान है, है ना। मैं जल का स्वाद हूँ, भगवान कहते मैं स्वयं ही जल का स्वाद हूँ। रोजाना हम सूर्य और चंद्रमा की, देखो, या तो हम सूर्य की रोशनी में कार्य करते हैं या फिर चंद्रमा की रोशनी, यानी कि ये दोनों रोशनियां सदैव हमारे साथ, उनमें से कोई ना कोई होती है। और भगवान कहते हैं प्रभास्मि शशि सूर्यया, कि सूर्य में और चंद्रमा में जो भी रोशनी है वो मेरी है। उसी तरह से भगवान कहते हैं कि बलम बलावतां चाहम, जिस जिसके अंदर बल है वो सब मेरा ही बल है। वास्तव में बल देने वाला मैं हूँ। और उससे भगवान कहते हैं, इसके अतिरिक्त 10.10 में बताते हैं, बुद्धिर बुद्धि मताम अस्मि, जिसके अंदर बुद्धि है वो बुद्धि भी मेरी दी हुई है। और आगे भगवान बताते हैं 10.11 में, यद्यत् विभूति मत् सत्त्वम् श्रीमदुचितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजो अंश संभव, कि इस संसार में जो भी तुम्हें तेजस्वी, जो भी ऐश्वर्यवान, जो भी प्रेम करने योग्य दिखता है, जो भी तेजस्वी दिखता है, वो केवल मेरे ही अंश, मेरा एक सफुलिंग मात्र है। तो इसका मतलब है संसार में हम जब जब जो जो चीज जो हमें भाती है, जो देख कर हमें अच्छा लगता है, उसको देखकर हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, परंतु फिर भी यह भौतिक वस्तुएं भगवान का प्रदर्शन तो कर रही है, भगवान की शक्तियों का, लेकिन क्योंकि भगवान दिव्य है, भगवान कभी इटर्नल है, वो कभी समाप्त नहीं होते। उसी तरह से जितने भी अभी हमने रूप पढ़े हैं, पहले जितने भी मत्स्य, कच्छप, वामन, वराह, श्री राम, वो हमेशा होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उस समय आए और फिर वो समय चला, यानी कि अब इतने सारे ब्रह्मांड है, वहां कहीं पर है ना सत्युग की लीला चल रही है, कहीं पर वराह भगवान की लीला चल रही होगी, कहीं पर अनाशी राम की लीला चल रही है, तो कहीं पर मत्स्य अवतार की, कहीं कच्छप अवतार की, तो भगवान लीलाएं करते रहते हैं और भगवान के सारे स्वरूप इटर्नल हैं। और उसके अतिरिक्त एक और बात है कि भगवान के जितने भी अवतार हैं उनका एक अलग लोक है, उनके जब उनके उपासक होते हैं तो वो उसी लोक में जाते हैं, जो उनका जो लोक होता है, बहुत सारे वैकुंठ लोक हैं, बहुत वैरायटी है भगवान के पास आपको देने के लिए। तो जिस जिसका जैसा जैसा भाव होता है भगवान उसको वैसा ही प्रोवाइड करते हैं। और इस संसार का ये विराट स्वरूप किस लिए है कि हर एक सुंदर वस्तु को देखकर हमें क्या लगे कि ये भगवान का सफुलिंग मात्र, ये भगवान की शक्ति है। अभी हम क्या करते हैं कि अगर कोई सुंदर होता है तो उससे ज्यादा सुंदर वस्तु को देखकर, या उससे ज्यादा सुंदर लड़की या उससे ज्यादा सुंदर लड़के को देखकर वो ईर्ष्या करने लगता है, उसको लगता है कि ये क्यों है मुझसे सुंदर, है ना, ऐसा लगता है कि नहीं मुझे सबसे ज्यादा सुंदर होना चाहिए, ये क्यों। लेकिन भक्त ऐसा सोचता है कि ये भगवान की कृपा है, ये भगवान का ऐश्वर्य है कि वो इतने सुंदर स्वरूप में दिख रहा है। जो भी इसी तरह से अगर कोई बुद्धिमान होता है तो भौतिक बुद्धिमान क्या होते हैं, आपस में कंपटीशन करते हैं कि नहीं उस वो ज्यादा बुद्धिमान कैसे हो सकता है, मुझे ज्यादा बुद्धिमान होना चाहिए और मैं ही ज्यादा हूँ। हर कोई एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब जीव को ये समझ में आता है कि ये सब जितनी भी पावर है वो भगवान की दी हुई है, तो फिर उसके अंदर विनम्रता आती है कि ये मैं भी भगवान का दास हूँ, मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, अगर कुछ अच्छा है तो भगवान का दिया हुआ है, वो कृष्ण की ही शक्ति है जिसके जो मेरे अंदर आकर कार्य कर रही है, वरना मैं तो हार्ड मास का बना हुआ एक शरीर कुछ नहीं कर सकता, ये केवल कृष्ण की शक्ति है जो मुझसे ये कार्य करवा रही है, जो बुद्धिमान वाले कार्य है या जो तेजस्वी कार्य जो भी है वो केवल और केवल भगवान। तो जब जीव को यह रियलाइज होता है कि सब कुछ कृष्ण का है तो उसके अंदर विनम्रता आती है। फिर इस तरह करते करते जब बहुत समय बीत जाता है और हमारा हृदय पवित्र हो जाता है तो फिर भगवान का साक्षात्कार होता है। लेकिन शुरू शुरू में क्या होता है, क्योंकि अभी हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं, तो भगवान जो है ऐसे अल्पज्ञों के लिए विराट स्वरूप का निर्माण करते हैं, क्योंकि वो जो नए नए दीक्षित होते हैं, नए नए भक्त होते हैं, वो क्या, वो पदार्थ से आगे कुछ नहीं सोच सकते, क्योंकि उनकी दृष्टि में वो आध्यात्मिकता नहीं आ सकती है। तो भगवान जो है वो इतने दिव्य हैं कि उनका स्वरूप उनके बुद्धि, क्योंकि हृदय मलिन है, हृदय अभी चेतो दर्पण हुआ नहीं है, भगवान के पवित्र नाम का जप किया नहीं है, तो ये प्रोसेस जब तक कंप्लीट नहीं होते, भक्ति जब तक नहीं करते, तब तक भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। एक बार किसी ने श्री प्रभुपाद जी से कहा कि आप कहते हो कि इस कलयुग में भगवान का नाम ही हमें भगवान प्राप्ति कराएगा, यानी कि कलौतत हरि कीर्तन, जिस तरह से सत्युग में ध्यान करने से भगवान के दर्शन होते थे और त्रेता युग में यज्ञ करने से भगवान के दर्शन होते थे, द्वापर युग में वगैरह पूजा से भगवान के दर्शन होते थे, और कलयुग में क्या हम जब नाम जप करेंगे तो क्या भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात्कार होगा, भगवान दिखेंगे? तो है ना, श्री प्रभुपाद ने कहा कि पहले क्या है कि यज्ञ में ध्यान और भगवान दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। जब ध्यान करो तो भगवान दिखेंगे, ठीक है। यज्ञ और भगवान दो अलग अलग चीजें हैं, जब यज्ञ करेंगे तो भगवान दिखेंगे। उसी तरह विग्रह और भगवान, उसको भी अगर हम बोलें कि विग्रह की पूजा करो और भगवान सामने आ जाएंगे, लेकिन नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है। अभिन्नत्वान नाम नामिनो, इस चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्तो अभिन्नत्वान नाम नामिनो। तो इस नाम को जब हम इतना रियलाइज करेंगे कि नाम और नामी में कोई अंतर ही नहीं है, तो साक्षात नाम जो है वही प्रकट हो जाएगा, और कोई नहीं है, नाम ही कृष्ण है। उसको जपते जपते जब हम भगवान को उस नाम में रियलाइज करने लगेंगे, उस नाम के अंदर ही भगवान को महसूस करेंगे, तो फिर वह ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ा प्रोसेस होगा उसके बाद, है ना, जिस तरह से यज्ञ किया जाता था या ध्यान किया जाता था सैकड़ों हजारों सालों तक, उसके बाद भगवान प्रकट होते थे। यहाँ पर इंस्टेंट है, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान ने अपनी समस्त शक्तियां भगवान के नाम के अंदर दे दी है। नाम नाम कारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्र अर्पिता। तो और उस नाम के अंदर वह सारा बल है, वह सारी शक्ति है, यानी सारा का सारा भगवान उस नाम के अंदर समाया हुआ है। तो जब हमारे हृदय से इस अज्ञानता का पर्दा हट जाएगा और हम उस नाम को महसूस करने लगेंगे, जिस प्रकार अगर किसी की आंख में मोतिया का प्रॉब्लम हो जाता है, तो अगर दोनों आंखों में मोतिया का प्रॉब्लम हो गया तो फिर क्या होगा, उस बीमारी की वजह से उसको कुछ दिखता नहीं है। लेकिन उसको दिखता नहीं है उसका मतलब ये थोड़ी है कि संसार में कोई दृश्य ही नहीं है। अब उसको क्या करना पड़ेगा, वो अपने मोतिया को इलाज कराएगा, है ना। उस जब इलाज कराएगा, ट्रीटमेंट के बाद उसकी नेत्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, तो उसको सब दिखने लगेगा। उसी तरह से आज हमारे नेत्रों पर यह भौतिकता का, माया का पर्दा चढ़ा हुआ है, और जैसे जैसे उस माया की मलिनता कैसे दूर होगी, भगवान कहते हैं चेतो दर्पण मार्जना, ये हृदय के अंदर जो मलिनता की जो धूल जमी हुई है उसको हटाने के लिए जब भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, भगवान के नाम का जप करेंगे, भगवान की कथाओं का श्रवण करेंगे, शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, तो हमारा ये भवरोग समाप्त हो जाएगा। और जब हृदय की ये मलिनता दूर हो जाएगी तो फिर भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। परंतु भगवान का जो यह विराट स्वरूप है वो काल्पनिक है, उस जिस तरह से अब परमात्मा रूप में भगवान प्रत्येक भौतिक रूप के अंदर रहते हैं। श्री प्रभुपाद जी बताते हैं हर एक चीज के अंदर भगवान परमात्मा के रूप में, परमाणु छोटा सा कीटाणु है उसके अंदर भी भगवान रहते हैं, लेकिन उसके अंदर जो भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं वो दिव्य है, लेकिन उसका भौतिक रूप तो कल्पना मात्र है। अब इस संसार में जो भी रूप दिखता है, चाहे वो भगवान का हो या जीव का हो, वो सब काल्पनिक है, वो सब समाप्त हो जाने वाले हैं, क्षणिक हैं। तो लेकिन फिर भी भगवान इस स्वरूप के द्वारा इस संसार में फैले हुए, वो इसलिए क्योंकि बद्ध जीव को स्मरण कराने के लिए। जैसे श्रील प्रभुपाद जी अक्सर बोलते थे कि जिस प्रकार से मेरी ऑप्टिकल अगर श्रील प्रभुपाद जी का रखा होता है, या शूज रखे होते हैं, या भी कुछ भी चीज श्रील प्रभुपाद जी से संबंधित होगी, तो हम उसको जो भी देखेगा वो क्या कहेगा, ये श्रील प्रभुपाद जी के हैं, ये देखो ये श्रील प्रभुपाद जी के। तो इस तरह कहते से क्या होगा, वो डायरेक्ट से श्रील प्रभुपाद जी को याद करेंगे ना। कोई भी चीज होगी, पेन होगी, देखो ये श्रील प्रभुपाद जी की है। तो भले वो दिखने में एक पेन है, पेन का तो हालांकि कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद से रिलेटेड है। उसी तरह से भौतिक की जगत है वो माया है, वो समाप्त हो जाने वाला है, क्षणिक है, लेकिन जब हम उसको भगवान के साथ रिलेटेड करके देखते कि देखो ये कृष्ण की माया है, ये इतने सुंदर है, फ्लावर्स लगे हुए हैं, वो सब भगवान की कृपा है, ये बुद्धिमान इतने बुद्धि से कार्य कार्य कर रहे हैं वो सब कृष्ण की कृपा है। और जो कुछ ये ऋतुएं बदलती हैं, जो सुंदर सुंदर ऋतुएं हैं, सुंदर सुंदर फ्रूट्स हैं, फल हैं, और जो कुछ भी अच्छा दिखता है संसार में, यदि हम ऐसे करते करते हर चीज में भगवान को अनुभव करेंगे तो फिर क्या होगा, हृदय के अंदर भगवान की स्मृति बनी रहेगी। तो इसीलिए इस विराट, हालांकि यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी अंतिम कहते हैं, निष्कर्ष यह है कि भगवान के विराट रूप की धारणा काल्पनिक है। वास्तव में वो काल्पनिक है, भगवान इस संसार में पाए जाते हैं कण कण में, लेकिन ये भौतिक चीजें जो है वो भगवान नहीं हो सकती है, लेकिन भगवान और भगवान तथा जीव दोनों ही जीव आत्माएं हैं और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक यानी चिन्मय है। अब इस यहाँ से ये भी दिखाया जा रहा है कि भगवान और जीव आत्माएं दोनों ही यहाँ संसार में जो दिखता है ना, उनका ये शरीर यानी भगवान का जो विराट स्वरूप, भगवान के अवतार नहीं, अवतार तो भगवान के जितने भी हैं वो सब दिव्य है, लेकिन जो विराट स्वरूप की बात हो रही है तो ये विराट स्वरूप और जीव का ये जो शरीर है वो दोनों भिन्न है, लेकिन भगवान का एक वास्तविक स्वरूप है और उनका मूल शरीर जो है वो आध्यात्मिक है, वो चिन्मयी है। और जब कोई जीव भगवान को स्मरण करता है प्रत्येक वस्तु को देखकर, हर समय जब भगवान का स्मरण होने लगता है कि ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान की शक्ति है, तो इस तरह से क्या कि हृदय इतना पवित्र हो जाता है और बुद्धि इस बात को स्वीकार करने लगती है, क्योंकि भगवान का चिंतन बना रहता है ना, तो इस चिंतन को बनाए रखने के बाद जीव भगवान के उस दिव्य स्वरूप को भी, क्योंकि प्रेम फिर हर समय जिसको हम याद करेंगे तो प्रेम डेवलप होगा ना, और इस तरह से प्रेम डेवलप होगा हृदय के अंदर भगवान के लिए, प्रेम बढ़ेगा तो फिर हम भगवान के वास्तविक स्वरूप को भी स्वीकार करेंगे। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। तो बहुत बहुत जन्मों तक कभी भगवान को निराकार समझते हैं, कभी भगवान को ना विराट समझते हैं, तो कभी भगवान को परमात्मा समझते हैं, ऐसे करते 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 जब वास्तविक बुद्धि आ जाती है जीव के अंदर, तो फिर कृष्ण को सरेंडर करते हुए क्या बोलता है, वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर, कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ है। और ये खाली ऐसा भगवत गीता में नहीं कहा गया, देखो ब्रह्मा जी ने भी यही कहा कि कृष्ण ही, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ब्रह्मा जी ने कहा कि सारे जितने भी दूसरे भी ईश्वर हैं, लेकिन उनमें यदि कोई परम ईश्वर है तो वो कौन है, कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, वो सच्चिद आनंद विग्रह है, उससे पहले कोई नहीं था, अनादिरादि गोविंद समस्त कारणों के कारण वही है। अभी हमने वेद व्यास जी के मुखारविंद से श्लोक नंबर 28 में पढ़ा और उन्होंने क्या कहा, एते चंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके अवतार है, उनके अंश है। अगर महादेव से कहा जाए तो महादेव अपनी पत्नी को बताते हैं, उमा कहूं मैं अनुभव अपना सच्चे हरि भजन जगत सब सपना, संसार में जो कुछ भी दिखता है वो सब सपना है, और भगवान श्री कृष्ण का यदि कोई भजन करता है तो वही सत्य है। तो चाहे वेद व्यास जी हो, चाहे नारद हो, चाहे जो भी दूसरे महान ऋषि हैं, ब्रह्मा जी हैं, वो सब भगवान कृष्ण को ही स्वीकार करते हैं कि कृष्ण केवल कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनके अंश और कलाएं हैं, और वही कृष्ण का वास्तविक स्वरूप है, वही आध्यात्मिक स्वरूप है, और ये जो भौतिक स्वरूप है वो काल्पनिक है। तो इस भौतिक स्वरूप की मेन क्या है, होने का, ताकि वो हमें हर वक्त भगवान का स्मरण करा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण।